ஓம் சாந்தி. ஸ்வமான் கா ஜாது, பிராமண் ஜீவன் மே ஸ்வமான் மே ஸ்தித் ரேனா அதி ஆவசியக் ஹே. स्वमान में स्थित रहने से हम बाप समान बनते जाते हैं. इसलिए बाबा मुरली में बार बार इशारा देते हैं, मीठे बच्चे सदा स्वमान धारी होकर रहो. स्वमानधारी होकर रहना अर्थात स्वमान का जो टाइटल होता है उसको धारण करना, उसको स्वरूप में लाना. तो स्वमान में स्थित रहने की विधि को समझना बहुत जरूरी है. बाबा ने मुरली में हमें बहुत स्वमान के टाइटल्स दिए हैं. स्वमान का दुकान लगा दिया है. इतने जो टाइटल बाबा ने दिए हैं उसमें से एक या दो टाइटल मुझे अपने लिए सिलेक्ट करना है, जो मुझे खुशी दिलाता है, जो मुझे नशे की अनुभूति कराता है, वो टाइटल मुझ आत्मा के लिए हैं. ऐसा समझना है. मान लीजिए आप टाइटल लेते हैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं. अब उसमें स्थित होने की विधि क्या है? पहले तो एकांत में बैठकर इस टाइटल के बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से गहराई से मनन चिंतन करना है. विश्व कल्याणकारी आत्मा का अर्थ क्या है? विश्व कल्याणकारी आत्मा के संकल्प कैसे होंगे, उसके बोल कैसे होंगे, उसके कर्म कैसे होंगे, उसका व्यवहार कैसे होगा, उसका चलन और चेहरा कैसे होगा, इस पर बहुत अच्छी तरह से मनन चिंतन करना है. उसके बाद स्वमान में स्थित रहने की विधि क्या है? विश्व कल्याणकारी ये सिंहासन हो गया. मैं आत्मा मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं, ऐसा समझना माना आप सिंहासन पर बैठ गए. और जैसे आप उस सिंहासन पर बैठेंगे आपका सब कुछ बदल जाएगा. आपका बोलना, चलना, उठना, व्यवहार करना सब कुछ बदल जाएगा. और जैसे सिंहासन से आप नीचे उतरेंगे तो आप स्वयं को बिल्कुल साधारण अनुभव करेंगे. स्वमान अर्थात स्वयं ही स्वयं को मान देना सीखना. कोई मान दे न दे मुझे उसकी परवाह नहीं है. भगवान ने मुझे मान दिया, भगवान ने मुझे इतने बड़े टाइटल दिए हैं, उसको मुझे दिल से स्वीकार करना है. कई बार हम सोचते हैं कि इतने बड़े टाइटल बाबा ने मुझे दिए हैं, उसके काबिल तो मैं नहीं हूं, उसके लायक तो मैं नहीं हूं, उसके कारण उसको स्वीकार करने के लिए हम हिचकते हैं। इसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हम जो सतयुग में राजे महाराजे थे, वो जैसे द्वापर युग में आए, माया ने हमें किडनैप किया और जेल में ठोक दिया। कितने वर्षों तक? 2500 वर्षों तक माया की जेल में गुलाम बनकर हम रहे, राजे महाराजे रानी महारानिया। अंग्रेजों की गुलामी 150 साल थी, माया की गुलामी 2500 वर्ष तक रही। उसके कारण आत्मा में हीन भावना कूट कूट कर भरी पड़ी है, वो हमें ऊपर आने ही नहीं देती है। उसके लिए बाबा ने हमें ये टाइटल दिए हैं। तो टाइटल का सहारा लेकर मेरे बच्चे उस खाई में जो गिरे हैं, खड्डे में, वहां से ऊपर आकर मेरे पास बैठ जाएंगे। तो हमें दिल से उन टाइटल को स्वीकार करना है, क्योंकि इस संसार में भगवान ही एक ऐसे है जो सदा सत्य बोलते हैं। हम सतयुग त्रेता युग में बोलते थे सत्य, बाद में बोलना छोड़ दिया। संसार में एक ही भगवान ऐसे हैं जो सदा सत्य बोलते हैं। तो हमें जो टाइटल दिए हैं, वो हमारी आदि मध्य अंत को देखकर बाबा ने ये टाइटल दिए हैं, इसलिए उसको दिल से स्वीकार करना है। 19 मार्च 88 में मैं ओम शांति भवन की स्टेज पर बाबा से पर्सनली मिल रहा था। बाबा ने मुझे टाइटल दिया विश्व परिवर्तक आत्मा हो। इतना बड़ा टाइटल दिया, विश्व परिवर्तन का कार्य बाप के साथ कर रहे हो। परिवर्तन शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है, परिवर्तन शक्ति के द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त कर रहे हो, करते रहोगे। तो इस टाइटल को जब मैं याद करता हूं, उसका हाथ मैं पकड़ता हूं, तो मुझे एक सेकंड में बाबा का साथ मिल जाता है। बाबा के बाजू में वो टाइटल मुझे बिठा देता है। इतनी जादू, इतनी चमत्कार इस टाइटल में होता है। हरेक का टाइटल अलग अलग हो सकता है। मैं योगी नहीं हूं, मैं तपस्वी नहीं हूं, मैं दुर्गा हूं, मैं असुर संहारिणी हूं, मैं राज ऋषि हूं, विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। जो भी टाइटल आपको अच्छा लगता है उसमें से सिलेक्ट करना है। बाबा ने हमें उस सिंहासन पर बिठा दिया है, माया उससे हमें नीचे उतारने का प्रयास करती रहती है। हमें उस सिंहासन को नहीं छोड़ना है। ये बहुत प्राप्तियां कराने वाला सिंहासन है, समझा? तो इस स्वमान के टाइटल से हमें 10 अद्भुत लाभ होते हैं, और उससे हमारे जीवन में बहुत चमत्कारिक परिणाम, रिजल्ट, अनुभव होते रहते हैं। तो पहला लाभ है, लिखो, स्वमान में स्थित रहना, अर्थात स्व स्वराज अधिकारी बनते जाना। जब आत्मा समान के सिंहासन पर बैठती हैं, अपनी शान में बैठती हैं, तो मन बुद्धि कर्मचारी हमारी आज्ञा पर चलने लगते हैं, हमें सैल्यूट मारते हैं, हमारी ऑर्डर पर चलने लगते हैं। उससे मन बुद्धि पर नियंत्रण और अनुशासन करने की शक्ति हमारी बढ़ती जाती है, जिसके कारण हम स्वयं के राजा, कर्मेंद्रियों के राजा अनुभव करने लगते हैं। शिव बाबा की आश है कि मैं हरेक आत्मा रूपी बच्चा राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूं। बाबा की आस हमें पूरी करनी है। राजा हमेशा सिंहासन पर बैठता है और राजा अपनी प्रजा पर शासन करता है, और जो स्वयं का राजा बनता है वही सतयुग त्रेता युग में औरों का राजा बनता है। इसलिए उस नशे में, उस मस्ती में हमें रहना है। भगवान ने मुझे राजाई लौटा दी है। माया ने मुझे गुलाम बनाया था और बाबा ने मुझे राजा बनाया। दूसरा लाभ, स्वमान में रहना अर्थात सदा स्वचिंतन में मगन रहना, परचिंतन से मुक्त हो जाना। क्योंकि जब आत्मा स्वमान में स्थित रहती है, ईश्वरीय नशे में झूमने लगती है, उसके कारण हमारे मन में बहुत शुद्ध और शक्तिशाली संकल्प चलने लगते हैं, हम स्व के चिंतन में खोए रहते हैं, उसका आनंद हम लेने लगते हैं, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हमें होती रहती है, परमात्म चिंतन में सदा खोए रहते हैं। इसलिए स्वमान में स्थित रहकर स्वचिंतन का, प्रभु चिंतन का आनंद हमें लेते रहना है। तीसरा लाभ, स्वमान में स्थित रहना अर्थात सर्व खजाने सफल करते जाना। जब हम स्वमान में स्थित होते हैं तो स्वयं को मैं आत्मा बालक परमात्मा का 100 खजानों का मालिक हूं। ये मेरे बाप के पास जो खजाने हैं उस पर मेरा अधिकार है। उन खजानों की हमें स्मृति रहती है। जैसे जो धनवान होते हैं, संपत्तिवान होते हैं, उनको अपने संपत्ति की पूरी जानकारी रहती है, ऐसे हमें खजानों की जानकारी रहती है और उन खजानों को हम स्वयं के लिए और सेवा के लिए यूज करते रहते हैं। और जितने ये खजाने हम यूज करते जाते हैं उतने ये खजाने बढ़ते जाते हैं। 1 लाख रुपया आपके पास है, आपने अलमारी में रख दिया है, 1 साल के बाद देखें 1 लाख ही रहेगा, लेकिन उसको आप धंधे में यूज करते हैं, ब्याज में रखते हैं, तो 1 का 1.25 हो जाएगा, 1.5 होगा, बढ़ता जाएगा। तो ऐसे खजानों को यूज करने से वो बढ़ते जाते हैं। बाबा ने हमें कितने खजाने दिए हैं बोलो? हाँ जी, बाबा तो खजानों का सागर है, तो बहुत खजाने दिए हैं, लेकिन उसमें भी मुख्य 9 प्रकार के खजाने हमें बाबा ने दिए हैं। पहला है श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, दूसरा है श्रेष्ठ समय का खजाना, तीसरा है ज्ञान का खजाना, चौथा है दिव्य बुद्धि का खजाना, पांचवा है खुशी का खजाना, छठवा है श्रेष्ठ कर्मों का खजाना, सातवा है दिव्य गुणों का खजाना, आठवा है शक्तियों का खजाना और नौवा है दुआओं का खजाना। तो इतने सारे खजाने बाबा ने हमें दिए हैं, जितना उनका प्रयोग करते जाते हैं उतने ये खजाने बढ़ते जाते हैं। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना है, खजाना प्राप्त करना है तो क्या करना होगा, हैं जी? खुद में और खुदा में खो जाना होगा। खो जाना तो खजाना मिलता है, अगर हमें खो जाना नहीं आता है तो खजाने नहीं मिलेंगे। सागर की लहरों में लहराने से क्षणिक आनंद जरूर मिलता है, लेकिन माल असली सागर के तले में रहता है, हीरे माणिक मोती। तो ऐसे बाबा जो सागर हैं, उसकी याद में जब हम खो जाते हैं तो हमें बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव के खजाने मिलते जाते हैं। चौथा लाभ, स्वमान में स्थित रहना अर्थात आत्म अन्वेषण करना। आत्मा में जो सुषुप्त शक्तियां हैं, आत्मा में जो सोई हुई शक्तियां हैं, उन शक्तियों को जगाना। हर एक आत्मा में असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ रहता है, उन शक्तियों को जगाने का काम केवल स्वमान ही करता है और उसके लिए दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। इसलिए एक स्लोगन हमेशा याद रखना है, अनुमान हमें हनुमान बनने नहीं देता है। कोई भी प्रकार का संशय अनुमान हमें हनुमान जैसा शक्तिशाली बलशाली बनने नहीं देता है। और जब हम स्वमान में रहते हैं, आत्मा पर पूरा विश्वास करते हैं, तो सारी शक्तियां जागृत होती हैं और हमें अपनी शक्तियों का खजाना अनुभव होने लगता है। हम देख रहे हैं यज्ञ के आदि काल में हमारी जो दादियां है वो छोटी छोटी बच्चियों के रूप में बाबा के पास आई थी। बाबा ने क्या किया, उनको स्वमान के सिंहासन पर बिठाया। तुम पता है कौन हो, तुम शेरनी हो, तुम शिव शक्ति हो। मैं शेरनी हूं, मैं शिव शक्ति हूं। काक्रोच बाथरूम में आता है, अरे बाप रे बाप, इसको इसको हटा दो। चूहा आता है, बाप रे बाप, इसको इसको हटा दो। कहां से शेरनी हो भाई? भगवान दूसरे दिन आते हैं, मैं सदा सत्य बोलने वाला हूं, तुम शेरनी हो, ललकारने वाली शेरनी हो, अनेक आत्माओं के दुर्गंध को मिटाने वाली दुर्गा हो। जो आत्माएं स्वीकार करती हैं वो आज शेरनिया बन चुकी हैं हमारी दादियां और सारे विश्व में वो क्रांति ला रही है। प्रैक्टिकल उदाहरण है। बड़े बड़े गुरुओं को चुनौतियां दे रही है, चैलेंज कर रही है। तो ये है सोमान का चमत्कार। साधारण कुमारियां अबलाएं आज देखो क्रांतिकारी बनकर ललकार रही है। यह है सोमान के जादू। पांचवा लाभ, सोमान में स्थित रहना अर्थात माया दुश्मन से सदा सेफ रहना। ये हमारा राज नहीं है, हमारा राज सत्ययुग त्रेतायुग में होगा। ये दुश्मन का राज है। माया ने, बाबा ने हमें बड़ा कठिन काम दिया है। रहो दुश्मन के राज में और प्रॉपर्टी दुश्मन के साथ में, अंश वंश विकारों की आत्मा में है और आपको नई दुनिया की स्थापना करना है। कितना कठिन काम है भाई। लेकिन बाबा ने कहा है ये सोमान का टाइटल लेकर ईश्वरीय नशे का कवच सदा पहनकर रखोगे तो दुश्मन आपको कुछ भी नहीं नुकसान पहुंचा सकता है। माया वार करेगी लेकिन उसका कोई भी असर नहीं होगा। माया कितना भी प्रलोभन करेगी आपको आकर्षित करने की, लेकिन बाबा ने हमें बहुत बड़ा लड्डू दिया है एक के जन्मों की बादशाही का। माया भी कहती आओ मेरे पास लड्डू है, आओ मेरे पास लड्डू लो। भाई दो लड्डू कौन से है माया के, हैं जी? वो लड्डू खाएंगे, खाने वाले भी पछताते हैं और नहीं खाने वाले भी पछताते हैं। तो लड्डू है व्यक्ति के तरफ आकर्षित होना और वस्तु के तरफ आकर्षित होना। ये दो लड्डू माया हमें ऑफर करती है। जो इसको लेने के लिए जाता है माया खूब बुरी तरह से उसको पीटती रहती है, कहीं का नहीं रखती। लेकिन जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर रहते हैं हम। एक घटिया दुनिया है, यहां क्या रखा है? असार संसार है, कोई रस नहीं है, नीरस दुनिया है। बाबा सर्व रसों के भंडार है। तो माया हमें रिझा नहीं सकती है। दुश्मन से हम सदा सेफ रहते हैं अगर ईश्वरीय नशे का कवच पहनकर रखते हैं। छठवां लाभ, स्वमान में स्थित रहना अर्थात आत्मविश्लेषण करना, सेल्फ एनालिसिस करना। जब हम एकांत में बैठते हैं, स्वमान में स्थित हो जाते हैं, आत्मा को झांक कर देखते हैं तो कौन सा दाग मुझ आत्मा पर है, कौन सी कमी खामी त्रुटि मुझ आत्मा में है, वो बहुत अच्छी तरह से हमें दिखाई देती हैं। और जैसे हमें अपनी कमी का पता चलता है उसको मिटाने का हर संभव प्रयास करते जाते हैं। जैसे डॉक्टर रोगी को बताता है ये तुम्हारी बीमारी है, रोगी जब तक उस बीमारी से मुक्त नहीं होता है तब तक चैन का सांस नहीं लेता है। अगर हमें कमी का पता नहीं चलता है तो कई वर्षों तक वो कमी हमारे साथ चलती रहती है। एक स्लोगन लिखो, कमी हमें कमाई करने नहीं देती है। खुशी खुद की कमी होगी तो पुरुषार्थ में वो बाधा डालेगी, कमाई करने नहीं देगी। और दूसरे की कमी हम देखेंगे तो उसका चिंतन होगा, उस पर हम सोचते रहेंगे, बाबा की याद नहीं रहेगी तो और कमाई नहीं होगी। इसलिए जो जिस चूज को छोड़ना चाहता है, फेंकना चाहता है, उस कमी को मैं लेना चाहूं तो मैं कितना समझदार हूं आप सोच सकते हैं। हाँ? बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी बॉम्बे में होती है, ऊपर की मंजिल का व्यक्ति वो कचरा फेंक रहा है नीचे और हम एप्रॉन करके हाँ डालो इसमें कचरा डालो। लोग कहेंगे तुम्हारी बुद्धि कहां गई, वो फेंक रहा है और आप ले रहे हैं झोली में। तो कमी से वो व्यक्ति परेशान है, उसको वो निकालना चाहता है और हम उसको ग्रहण करना चाहते हैं, सोचते हैं, बुद्धि में रखते हैं, है ना। तो समान में रहने से, आत्मविश्लेषण करने से जो कमी खामी है उसका पता चलता है और उसको निकालने का हम पूरा प्रयास करते हैं और उससे फ्री हो जाते हैं बीमारी से। सातवां लाभ है स्वमान में स्थित रहना, अर्थात सबसे मूल्यवान खजाना समय का है, उस खजाने को सफल करते जाना। जितने भी बाबा ने हमें खजाने दिए हैं उन सभी खजानों से समय का खजाना सबसे मूल्यवान है। बोलिए क्यों, थोड़ा गहरा जवाब दो, बोलिए। समय का खजाना सबसे महत्वपूर्ण श्रेष्ठ खजाना है, कैसे? हाँ? वापस नहीं आता है, बहुत अच्छी बात है, और बोलिए जी। हाँ? अभी नहीं तो कमी नहीं, बहुत अच्छी बात है, बोलिए। चढ़ती कला का युग है, बहुत अच्छी बात है। केवल समय का खजाना ही आधार है अन्य खजाने को पाने का, और कोई खजाना आधार नहीं है, बेसिस नहीं है। समय के खजाने के आधार से ही हमें अन्य खजाने मिलते हैं, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण खजाना है। दूसरी बात, ये छोटा सा संगम युग है, इस छोटे से संगम युग में सारे कल्प के लिए खजानों को हमें जमा करना है, श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोना है जिसका फल हमें भविष्य में मिलेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खजाना है, इसलिए हर एक पल को हमें सफल करते जाना है। मेरा हर पल सफल हो रहा है या नहीं कैसे पता चलेगा भाई? सफल, अच्छा फल मुझे मिल रहा है, अच्छी प्राप्ति मुझे हो रही है, माना मेरा हरेक पल सफल होता जा रहा है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जो मोटी बुद्धि वाले होते हैं वो समय के खजाने को साधारण रीति से बिताते हैं, और जो महीन बुद्धि वाले होते हैं, जो बहुत सूक्ष्म बुद्धि वाले होते हैं, वो हर एक सेकंड को सफल करते जाते हैं और अपने भाग्य का सितारा चमकाते रहते हैं। इस संगम युग का हर एक सेकंड हमें क्या कहता है? घड़ी टिक 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 कर रही है और कहते हैं ठीक 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 हो। हर एक सेकंड हमें क्या कहता है? भगवान के साथ सेकंड करो, अपना बुद्धि रूपी हाथ बाबा के बुद्धि रूपी हाथ में देते रहो, अर्थात याद में टिकते रहो। ये हर एक सेकंड हमें कहता है। तो इसलिए हमें खास ध्यान देना है समय के खजाने को सफल करने पर, ठीक है। बाद में आठवां खजाना, सम्मान में स्थित रहना, अर्थात सबकी विशेषताएं देखते जाना। जब हम ऊंचे शान में रहते हैं तो हमें किसी की कमी नजर ही नहीं आती है, दिखाई नहीं देती है, हमेशा विशेषताएं नजर आती है। विशेष आत्मा वो होता है जो सबकी सदा विशेषताएं देखता रहता है। तो सम्मान में रहने वाला खुद ही श्रेष्ठ सम्मान में रहता है, और जिसके पास जो होता है वो दूसरों को देता है। तो सम्मान में रहता है तो दूसरों को भी सम्मान देगा, सम्मान देगा। प्रकाश मणि दादी जी ने जाते जाते एक मंत्र दिया था, दादी जी जैसा बनना चाहते हो, दादी जी से अगर आपका विशेष प्यार है तो दो शब्दों को जीवन में धारण करो, सदा सम्मान में रहो और सबको सम्मान देते रहो, बस। हमेशा निर्विघ्न रहकर आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि सम्मान में रहने से हमारी श्रेष्ठ स्थिति बनती जाएगी और दूसरों को सम्मान देने से कोई विघ्न रूप बनेगा ही नहीं। हर कोई चाहता है मुझे मान मिले, सम्मान मिले, दो ना, बड़ा दिल रखकर सबको सम्मान देते रहो। इसलिए एक स्लोगन कभी भी नहीं भूलना है, जो देगा मान वही बनेगा महान। मान देने वाले माननीय बनते हैं। तो हमें खुले दिल से मान देते रहना है लोगों को, लेकिन सदा सम्मान में रहना है और सबको सम्मान देते रहना है, सबकी विशेषताएं देखते रहना है। विशेषताएं मुझे सबकी दिखाई दे, उसके लिए क्या करना होगा है जी? विशेषता का चश्मा पहनकर रखना है। माया ने हमें चश्मा पहनाया है कमियों को देखने का। हम किसी को भी मिलते हैं ना, सबसे पहले उसमें कमी ढूंढते हैं। इतना बड़ा सफेद ड्रेस पहना हुआ है लेकिन वो नजर नहीं आएगा, वो काला दाग है ना छोटा सा, वही नजर आएगा। ये हमारी आदत बन चुकी है द्वापर युग से। तो बाबा ने हमें चश्मा दिया है विशेषताओं को देखने का, वो चश्मा हमको पहनकर रखना है और सदा सबकी विशेषताएं हमें देखते रहना है, ठीक है ना? नौवा लाभ, सम्मान में स्थित रहना, अर्थात रॉयल संस्कारों को धारण करना, नोबल संस्कारों को धारण करना। हमारा भविष्य का जो जन्म होता है किसके आधार पर होता है? परम धाम से आत्मा जब नीचे आती है, कहां उसको जन्म लेना है, कौन से परिवार में जन्म लेना है, कोई बताता नहीं है। लेकिन जिस उसके जैसे संस्कार हो गए तो संस्कारों के समानता के आधार पर उसी घर में जन्म लेगा जहां उसके जैसे वो संस्कार होंगे। बहुत रॉयल संस्कार हो गए तो रॉयल परिवार में ही उसका जन्म होगा। तो अभी हमें परम धाम रूपी घर वापस जाने के पहले आत्मा में वो रॉयल संस्कार धारण करने हैं, ताकि सतयुग से लेकर हमारा जन्म बहुत अच्छे रॉयल परिवार में ही होता रहेगा। और रॉयल संस्कार जिसके होते हैं उसके फीचर्स भी बहुत रॉयल होते हैं। मां की पेट में 5 मास का गर्भ होता है, उसमें आत्मा नहीं होती है, लेकिन जैसे आत्मा शरीर छोड़कर गर्भ में प्रवेश होती है, 4 मास 9 दिन रहती है, उस पीरियड में उसके संस्कार के आधार पर उसके चेहरे के फीचर्स और आत्मा का नेचर ऑटोमेटिक बनता है। उसके चेहरे के फीचर्स को देखकर फिर माँ बाप उसका नाम भी रखते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए रॉयल संस्कारों को हमें धारण करना है। कैसे धारण करेंगे, उसकी विधि क्या है? सबसे पहले शुरुआत उसकी है बहुत ऊंचे स्वमान में स्थित रहना। उससे क्या होगा, बहुत ऊंचा ईश्वरीय नशे की अनुभूति होती रहेगी। उसके बाद उसके मन में ऐसे ऊंचे श्रेष्ठ संकल्प चलते रहेंगे। उसके बाद उसके मुख से ऐसे ही श्रेष्ठ बोल निकलते जाएंगे। उसके बाद उसके ऐसे ही श्रेष्ठ कर्म होते जाएंगे और उसके परिणाम स्वरूप उसके ऐसे संस्कार ऑटोमेटिक धारण होते जाएंगे। शुरुआत कहां से हुई, श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहने से हुई। जितना ऊंचा स्वमान होता है उतना ऊंचा नशा, उतने ऊंचे रॉयल संस्कार आत्मा में धारण होते हैं। ब्रह्मा बाबा को हमेशा नारायणी नशा रहता था। उस नशे से बाबा के जो फीचर्स है, बाबा के जो संस्कार है, वो नारायण जैसे नंबर 1 बन गए। इसलिए हमेशा हमें बहुत रॉयल नशे में रहना है। हमारी उन्नति हो रही है या नहीं इस ज्ञान मार्ग में कैसे पता चलेगा भाई, है जी? हम बाबा के घर में जाते हैं, पालना लेते हैं, ज्ञान योग की पालना लेते हैं, मेरी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं, मेरी उन्नति हो रही है या नहीं कैसे पता चलेगा भाई? हाँ, डॉक्टर थर्मामीटर से फट से बताता है कल आपको बुखार 102 था, आज 103 है, बढ़ गया है। तो हमारी उन्नति हो रही है नहीं कैसे पता चलेगा, ईश्वरीय नशे की डिग्री से। पिछले वर्ष जो ईश्वरीय नशा था वो इस वर्ष बढ़ चुका है, माना आपकी प्रोग्रेस हो रही है। नशा अगर कम हो जाता है माना प्रोग्रेस आपकी कम हो रही है, स्पष्ट हमें पता चलता है। इसलिए ईश्वरीय नशा आत्मा की ज्ञान है और आत्मा की शान है। नशा उल्टा क्या है, शान। ईश्वरीय नशा कितना है, कैसा है, कैसा पता चलेगा, किसमें पता चलेगा जी? नशा आपको चढ़ा हुआ है बहुत, कैसे पता चलेगा दूसरे को? चेहरे से, बोल से, बोलो, आंखों से। शराब बहुत पी लिया तो आंखें लाल हो गई, गटर में पड़ा है मैं तो स्वर्ग में हूं। तो ऐसे ईश्वरीय नशा जब चढ़ जाता है तो आंखों से पता चलता है कितना नशा चढ़ा हुआ है। और ऐसे नशे में जो झूमते हैं वो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, अपनी अलौकिक दुनिया, संगम युग की दुनिया, सूक्ष्म वतन की दुनिया, परम धाम की दुनिया, उसमें रहते हैं। तो आंखों से पता चलता है कितना नशा चढ़ा हुआ है, ठीक है ना? इसलिए हमें चेक करते जाना है, ईश्वरीय नशा मोज आत्मा का बढ़ता जाए। बाबा के चेहरे के तरफ देखो, बाबा जब गुलजार दादी जी के तन में आते हैं, डायमंड हॉल के स्टेज पर बैठे हैं, केवल आंखें देखो, बाबा की आंखों से लगता है दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता आकर हमारे सामने बैठी हुई। आंखें बोलती है, चेहरा बोलता है, मुख से बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, बोलता है ना? तो ऐसे जैसे जैसे हमारा ईश्वरीय नशा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारे संस्कार रॉयल होते जाते हैं। दसवीं बात, दसवां लाभ, स्वमान में स्थित रहना, अर्थात स्व पिता से कनेक्ट होकर रहना। स्व माना मैं आत्मा, मान अर्थात मैं महान आत्मा हूं। हम केवल आत्मा नहीं है, दुनिया में जैसे आत्माएं हैं वैसे हम नहीं हैं। जो भी यहां बैठे हुए हैं, परमात्मा ने उनों का करोड़ों में सिलेक्शन किया है, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, कितनों में? करोड़ों में किया है। भाई ताली तो बजाओ जरा। दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती, उसने करोड़ों में मेरा सिलेक्शन किया है। कितने भाग्यशाली है, देखो सोचो तो सही। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता ने मेरा सिलेक्शन किया है नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। भले वर्तमान समय हम साधारण हैं, पोजीशन हमें नहीं है, लेकिन भगवान को जो विशेषता चाहिए वो विशेषता हर आत्मा में है, है ना? तो आत्मा समझते हैं तो इस देह से हम न्यारे हो जाते हैं, कनेक्शन बुद्धि का कट हो जाता है। देह से, देह की दुनिया से, देह के पदार्थों से, देह के संबंधों से न्यारे हो जाते हैं। अभी यहां से ऊपर जाना है तो कैसे जाएंगे? स्वमान का हाथ पकड़ेंगे तो स्वमान यहां से आपको ऊपर ले जाएगा। स्वमान से आपका मन और बुद्धि नशे से भरपूर होती जाएगी, हल्का फुल्का अनुभव होता जाएगा, खुशी में झूमते जाएंगे और ऑटोमेटिक आपकी मन और बुद्धि जो है परम धाम में बाबा के पास बिठा देगी। मिल गया ना भाई? समान का हाथ पकड़ने से बाबा का साथ मिल गया ना? बोलो मिल गया कि नहीं? मिल गया। अभी साथ मिलने के बाद भी समान में रहने से चित्त की वृत्तियां शांत होती है, शीतल होती हैं। उसके कारण परमात्म मिलन में हमें बहुत सुंदर और बहुत गहन अनुभूतियां होती रहती हैं। बाबा से हम खूब खजाने लूटते जाते हैं, बाबा कहते हैं सागर के कंठे पर बैठे हैं, लूटो जितना लेना है लूटो और लुटाते चलो, है ना। तो आप चेक करना, जिस समय आपको बहुत ऊंचा सामान चढ़ा हुआ है, नशा अनुभव हो रहा है, आप इस दुनिया में नहीं अनुभव करोगे, वहां अनुभव करेंगे स्वयं को। टॉप क्वालिटी की आत्माएं हमेशा टॉप फ्लोर पर रहती है बुद्धि से। ये तो थर्ड फ्लोर है ना भाई। तो ऊपर वाले के पास जाना है, उपराम होना है, तो ये नशा हमें ले जाता है, उपराम बनाता है और ऊपर वाले राम के पास बिठा देता है और खजाने लूटते जाते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मेरा भाव है कि ये जो 10 अद्भुत लाभ है सोमान के, जादुई लाभ हैं, उनको अच्छी तरह से समझना है और वो अपने जीवन में अनुभव करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है ना। जैसे जो बड़े लोग होते हैं ना, अभी मोदी जी क्या प्राइम मिनिस्टर है ना भाई, दूसरे देशों में जाएंगे ना उनका चेहरा देखो क्या नशे में चढ़ते, मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर हूं, बस ना भाई भारत का ही है ना। अरे हम भारत के नहीं, मेरा बाप कौन है, मेरा बाप कौन है भाई, तीनों लोगों का प्राइम मिनिस्टर है और उसका मैं बच्चा हूं, उसका मैं बच्चा हूं, कितनी बड़ी हस्ती का मैं बच्चा हूं। तो जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती, चेहरे पर वो अनुभव होनी चाहिए। अगर वो मस्ती अनुभव नहीं होती है तो उस हस्ती के साथ मेरा कनेक्शन नहीं है, जितना होना चाहिए उतना कनेक्शन गहरा नहीं है, इसलिए चेहरे पर वो रूहानी मस्ती नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है भाई। अभी वो अनुभव करना है मस्ती है जी, तो सब खड़े हो जाएंगे। We'll be right back. होके बैठेंगे, कोई को पॉकेट डायरी वगैरह कुछ डायरी सब हटा दो, एकदम आजाद पंछी बन के बैठ जाओ। ये मास्क भी निकालो ना थोड़ा, दो मिनट के लिए, कौन सी है तो? दो मिनट के बाद में चढ़ा, बाद में जब बाहर निकलेंगे ना तो फिर चढ़ा दो, बंधन नहीं चाहिए, बैठो। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य गुफा में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी, विराजमान हूं। मैं आत्मा तपस्वी, विधि स्थिति की तपस्या में लीन हूं, खोया हुआ हूं। मैं आत्मा तपस्वी, माया का गुलाम था, अभी सर्वशक्तिवान परमात्मा ने मुझे स्वमान के सिंहासन पर बिठा दिया है। मैं आत्मा तपस्वी, विश्व कल्याणकारी सिंहासन पर विराजमान हो चुका हूं। विश्व पिता ने, विश्व कल्याण अर्थ मुझे अपना बनाया है। भाग्य विधाता ने मेरे भाग्य को चमका दिया है। मैं आत्मा तपस्वी पद्मा पदम भाग्यशाली हूं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी चैतन्य गुफा से न्यारी होकर बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर तीनों लोगों की सैर करने निकली। मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं। चारों ओर सफेद सफेद दिव्या प्रकाश प्रकाश है, पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यह। मेरे हरेक कर्मेंद्रिय से दिव्य प्रकाश की किरणें प्रस्फुटित हो रही है। फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबल भी उनके ब्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता अब बाबा की दृष्टि का भरपूर आनंद ले रहा हूं। असीम प्यार और असीम शक्तियां, स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं। बाबा की बाहों में समा गया हूं। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। सिक्किलदे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5,000 वर्षों बाद पाया है, इसलिए मैं बेहद खुश हूं। प्यारे बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में आपका सदा स्वागत है। जब जाओ, जिस भी संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो। कभी मुझे पिता के रूप में अनुभव करो। भी परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो। तो कभी परम सतगुरु के रूप में अनुभव करो। मेरा वरद हस्त अपने माथे पर अनुभव करो। सदा मेरी छत्र छाया में चलते रहो, पलते रहो। ऐसी विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करो। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया है यह। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। इतना प्यारा घर है यह मेरा, परम धाम मूल वतन। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण नाथ, मेरे प्राण पिता, सत्यम शिवम सुंदरम। प्यारे शिव बाबुल, मां से आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा की सुंदर छवि को दिव्य नेत्र से निहार रही हूं। जी भर के देख रही हूं, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं, मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिल आराम। बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है, शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य परमात्मा से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य सुपिता से प्रचंड शक्तियां अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं। योग की ज्वाला में, योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पालावर में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के खुशनुमा पल है यह, जब मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वारे में वाह मेरे पावा, वाह मेरा भाग्य, शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं। पुनः इस शरीर रूपी चैतन्य गुफा में विराजमान हो चुके हूं। मुझ शक्तिशाली आत्मा तपस्वी से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रहे, वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना मेरे मस्तक पर। मस्तक मणि आत्मा चमक रही है, अष्ट शक्तियों की चमक मज मस्तक मणि आत्मा से चारों फैल रही है, फैलती जा रही है।
तो सबने जादू देखा, समान का अनुभूति का, हाँ तब ऐसे जादू करते रहना। तो भ्राता जी को धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं। चलता है ना, क्या खातरी करे क्या खातरी करे, है ना। तो बाबा के घर में भी जब बच्चे आते हैं बाबा को बहुत संकल्प चलते हैं। तो आज स्पेशल आपकी खातरी है, स्पेशल डिनर, वो आइटम जो घरों पे नहीं बन सकता, सेंटरों पे नहीं बन सकता, कौन सा आइटम है, तंदूरी रोटी। तो शाम को अभी भोजन करके विश्राम करके फिर शाम को चार धाम करना, 4 से 5, 5 बजे यहाँ पहुंच जाना, 5 से 6 एक घंटा पावरफुल योग, और 6 बजे हमारे बीच में गीता दीदी आएंगे, 6 से 7 क्लास, और फिर आधा घंटा योग कंडक्ट कराएंगे। ओम शांति।